दौला पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं,
नमो वच्छायाणं,
नमो लोए सौवसाऊनं,
सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुवमम पत्थसौखमणवच्चम्, केवल पहोहणिज्य दुन्नयति मिरंजनं नमः। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। ये जो प्रथम जो जीव स्थान है, उसकी सत प्ररूपना चल रही है। दूसरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 514 पर हम आ गए हैं, 514। अभी प्रमत्त संयत मनुष्यों की बात चल रही थी, अपनी सामान्य मनुष्यों में, अब उनमें ही गुणस्थानों की बात चल रही थी। मनुष्यों में गुणस्थान जो हमने ओघ में गुणस्थान बताया, वही यहाँ पर घटित होगा, क्योंकि मनुष्यों में ही तो ये छठा गुणस्थान होता है। तो यहाँ जो नया पैराग्राफ शुरू होता है, वहां से हम पढ़ेंगे। अब प्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक न्यूनता और अधिकता से रहित, न्यूनता या अधिकता से रहित का अर्थ क्या है, जो मूल हमने देखे थे ओघ, जिसमें गुणस्थानों में हमने देखे थे आलाप, वही बात यहाँ पर भी घटित होगी, क्योंकि ये मात्र मनुष्यों में ही होते हैं। वहाँ सभी बातें जो बता चुकी, वही यहाँ पर भी लागू होती है। तो न्यूनता और अधिकता से रहित मूल ओघालाप कहना चाहिए। वहां जो बताए बातें वही यहाँ पर भी होगी, अर्थात गुणस्थानों की अपेक्षा जो आलाप छठे गुणस्थान से लेकर चौदह गुणस्थान तक कहे आए हैं, वे ही यहाँ मनुष्यों के छठे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक के समझना चाहिए, क्योंकि छठे से आगे के सभी गुणस्थान मनुष्यों के ही होते हैं। इसलिए सामान्य कथन में और इस कथन में कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेष है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमने सामान्य मनुष्यों के देखे। अब मनुष्य पर्याप्तकों के भी आलाप कहने पर ये कहना चाहते हैं, देखो हमने पहले देखा था, पेज नंबर निकालिए, सामान्य से सभी जो पेज नंबर है 437, 436 समझो ना, ये प्रमत्त संयत जीवों के ओघालाप कहने पर मिला
36 पर ना?
हाँ, वो बात किसमें चल रही थी अपनी, जरा पीछे चलो जरा। देखो 425 पेज से ये बात चालू हो गई थी, या पर्याप्त अवस्था से उसके पहले भी। पर्याप्त पर्याप्ति पर्याय से नहीं, पर्याप्त अवस्था उसके भी पहले, यानी यहाँ ओघ आलाप चल रही थी बात। कहाँ से शुरू होता है मुझे उसको बताने, आपको यानी जहाँ से वो सभी सामान्य जीवों के सामान्य आलाप, पेज नंबर 419 देखना।
419
हाँ, सामान्य जीवों के सामान्य आलाप वहां से शुरू हुई थी बात। वो तो फिर पर्याप्त अपर्याप्त की बात बताई, फिर उन्होंने गुणस्थानों में बताना चालू किया। ये पेज नंबर 428 से शुरू हुआ, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान की बात बताई, तो उसमें चारों गतियों की बात आई। अब आगे आते हैं, सात सदन में भी चारों गतियां थी, तीसरे में भी चारों गतियां थी, चौथे में भी चारों गतियां थी, पांचवें गुणस्थान की बात, उसमें तो तिर्यंच गति और मनुष्य गति थी। अब 436 पेज निकालना जो पहले बताया था। अब प्रमत्त संयत जीवों के ओघालाप, अब उसको जरा पढ़ेंगे। प्रमत्त संयत गुणस्थान, उसमें दो जीव समास लिए थे क्योंकि अपर्याप्त को भी लेना आहारक की अपेक्षा। हाँ, तो 6 पर्याप्त या 10 प्राण, 7 प्राण वगैरह वगैरह जो सब हमने देखा था। अब यही बात मनुष्य जो गति मार्गणा में, मनुष्यों में भी यही एप्लीकेबल है। देखो उसके बाद प्रमत्त संयत के बाद अप्रमत्त के आलाप बताए 437 पेज पर मिला। उसके आगे देखो 8वें गुणस्थान के, 9वें गुणस्थान के जो अलग अलग आलाप है उसमें भी हमने पहला भाग, दूसरा भाग, तृतीय, तो कहां तक चले जाना ऐसा, तो कहते 14वें तक। तो ये सब मनुष्यों में ही घटित होते हैं। अब हम किस में देख रहे हैं, पेज 514 पर। अभी मनुष्य, सामान्य मनुष्यों की बात है। तो जो हमने गुणस्थानों में छठे से लेकर 14वें तक के जो बीज प्ररूपणा बताई थी, वही बात मनुष्य जो हमारी गति मार्गणा में मनुष्यों के जो सामान्य मनुष्यों में 6 से 14वें तक भेद है, उसमें भी वही कथन होगा। कथन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्या कहा देखो, फिर ये पैराग्राफ पढ़ती, प्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर 6 से लेकर 14वें गुणस्थान तक न्यूनता अधिकता से रहित नहीं, जैसा वहां कथन है मूल ओघालाप। ओघालाप ने वो गुणस्थानों में जो जो 6 से 14वें तक के गुणस्थानों में 20 प्ररूपणा घटित की थी, वैसा का वैसा, यानी गुणस्थानों की अपेक्षा जो आलाप, आलाप यानी जो हमने वो 20 प्ररूपणा का कथन किया था, 6 से लेकर 14वें गुणस्थान तक कहे आए हैं वे ही, यानी वे ही आलाप, यानी वैसा ही कथन यहाँ मनुष्यों के 6 गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के समझना चाहिए। क्यों, इसका कारण क्या, क्योंकि ये सारे गुणस्थान मनुष्यों के ही होते हैं। तो 6 से 14वें गुणस्थानों में कथन करो या मनुष्यों के 6 के 14, एक ही बात है। ख्याल में आई बात, ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ, अभी आगे। अब ये तो सामान्य मनुष्यों के आलाप हो गए, पहले तो उसमें 14 गुणस्थान होते ये कह दिया, फिर एक एक गुणस्थान की अलग अलग बात बताई। अब मनुष्यों का दूसरा भेद कौन सा है, मनुष्य पर्याप्त, उसका कथन करेंगे। तो मनुष्य पर्याप्तकों के भी आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक मनुष्य सामान्य के आलापों के समान आलाप जानना चाहिए। अथवा यानी वहां उन्होंने पर्याप्त मनुष्यों में या तो तीनों वेद को ले लो या पुरुष वेद नपुंसक वेद को ले लो, ऐसे दो कथन किए थे। मनुष्य पर्याप्त कहने से तीनों पर्याप्त जीव बस इतना ही ले लो, या स्त्री वेदी को अलग निकालो। देखो देखो देखो, हमने किया था कथन, अब भूल गए। देखो देखो, हाँ हाँ हाँ, यानी वो जो कथन होता है ना, जीव समास ने मार्गणा, गति मार्गणा में जैसे हमने, हाँ जैसे तिर्यंचों में सामान्य तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच, पंचेंद्रिय, ऐसे यहाँ पर अथवा करके उन्होंने वेद की प्रकरण में बताया था। अथवा यहाँ लिखा है, ये तो 4 प्रकार 503 पेज पर बताए थे, मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य ने और मनुष्य अपर्याप्त। हाँ, तो अभी मनुष्य पर्याप्त जब कहेंगे हम, तो मनुष्य पर्याप्त में या तो पुरुष वेदी नपुंसक वेदी को ले लो या तीनों को ले लो, ये दो प्रकार से कथन आता है। हाँ देखो 514 पेज पर हम पढ़ रहे थे, मनुष्य पर्याप्तकों के भी आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक मनुष्य सामान्य के आलापों के समान आलाप के जानना चाहिए। अथवा देखो इसमें भी अपर्याप्त ले लेंगे, पर्याप्त यानी मनुष्य पर्याप्त है, हमारा आलाप है, हमारा कथन है, परंतु उसमें भी पहले गुणस्थान वाले विग्रह गति में पर्याप्त नाम कर्म के जीव है। मनुष्य पर्याप्त कहने से उसमें पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए।
पर्याप्त विग्रह गति में
इसको
लेना
मनुष्य पर्याप्त, हमारा ये जो कथन है वो मनुष्य गति मार्गणा में पर्याप्त मनुष्यों के लिए, पर्याप्त नाम कर्म वाले मनुष्यों के लिए है। तो विग्रह गति में भी उनका नहीं हुई तभी, क्योंकि वो पर्याप्त मनुष्य पर्याप्त ये भेद है, गति मार्गणा का भेद है। उसमें अपर्याप्त यानी वो लब्धि अपर्याप्त को केवल छोड़ देना, निर्वृत्ति अपर्याप्त को लेंगे हम।
इसमें सब में लेने का हम लोग ने देखा,
किसमें
तिर्यंश पर्याप्त बोलते हैं,
हाँ उसमें भी लेंगे तिर्यंश पर्याप्त, देख लो देख लो।
कार्बन का जो विश्व का ये
निकालो निकालो निकालो, देखो पंचेंद्र तिरंज पर्याप्त 492 पर भी मिला मुझे को, ये तो चौथे गुणस्थान वाली बात है। नहीं नहीं वो पर्याप्त की बात थी, खबर
मुझे 512 पेज पे हमने मनुष्य पर्याप्त का देखा है, वहाँ पे योग भी हमने खाली योग के लिए।
अभी अभी जरा कंफ्यूजन मत करो, मैं क्या बताना चाहती हूँ आप सुनो, इनका प्रश्न का पहले उत्तर देते हैं। अपना आलाप किसका चल रहा था, पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त चाहिए ना, 485। वो पंचेंद्रिय तिर्यंशों के पर्याप्त आलाप है, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंशों के आलाप नहीं है, ये सामान्य पंचेंद्रिय लिए। ये इसीलिए हमने वहाँ हमने उल्टा सुल्टा किया था, उसके आगे का भेद अलग होगा। पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंश ऐसा चाहिए हमको। देखो उनका ये प्रश्न है, पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्तकों में हमने क्या अपर्याप्तों के लिए थे जीव समास, यही प्रश्न था ना। हाँ पेज नंबर 494 पहली लाइन 494 पहली लाइन देखो, पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्तक, अभी ये मार्गणा की अपेक्षा ये भेद हुआ। पहले हमने देखे थे सामान्य तिर्यंश, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंश, पंचेंद्रिय तिर्यंश कहने से पर्याप्त पर्याप्त सब योनिनी सब कुछ आ गए। अब यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक पंचेंद्रिय तिर्यंश सामान्य के आलापों के समान ही आलाप समझना चाहिए, नहीं उसमें पर्याप्त अपर्याप्त सब लिए है ना।
485
पर जो था ना
सामान्य है ना,
हाँ
आदि के पांच गुणस्थान संगी पर्याप्त और संगी पर्याप्त ये दो हाँ। जीव समाज
वो तो पर्याप्त है, पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त जीव है वो
हाँ। तो
वो नहीं उसके भी पहले पंचेंद्रिय तिर्यंश उनके सामान्य आलाप 484 पर देखना चाहिए
हाँ।
नहीं नहीं वो अलग बात है, ये अलग बात है, वो सामान्य में पर्याप्त अपर्याप्त को इंक्लूड करना वो बात वहाँ 484 पर है। आदि के पांच गुणस्थान संगी पर्याप्त संगी अपर्याप्त असंगी पर्याप्त असंगी अपर्याप्त यह है ना। यह है पंचेंद्रिय तीरेंचों के सामान्य आलाप।
तो ये पर्याप्त में भी निवृत्त है अपर्याप्त।
हाँ समझ में आई बात फिर से।
तो पर्याप्त कैसा ध्यान दिया है।
हाँ देखो हमारा कथन किसके बारे में चल रहा है। तीरेंचों के पांच भेद किए थे, सामान्य तीरेंच, फिर पंचेंद्रिय तीरेंच। पंचेंद्रिय तीरेंच में क्या लिया, संगी असंगी, पर्याप्त अपर्याप्त सब। अब कह रहे पंचेंद्रिय तीरेंच पर्याप्त, तो पंचेंद्रिय तीरेंच पर्याप्त है, पर्याप्त नाम कर्म वाले, तो उनमें लब्धि अपर्याप्त को छोड़ना, अपन निवृत्ति अपर्याप्त को लेना, और फिर पंचेंद्रिय तीरेंच क्यों नहीं मानी सामान्य। हाँ पर्याप्त वाली बात 494 पर है, यहाँ जो 485 पर जो पर्याप्त लिखा है ना, वो इसीलिए हमने उल्टा सुलटा करके आपको बताया था हेडिंग में, वो पंचेंद्रिय तीर्यंचों के पर्याप्त आलाप है। पंचेंद्रिय तीर्यंच इन जनरलों में हमको पर्याप्त जीव लेना है। सवाल ही नहीं, वो पर्याप्त जीवों को लिया है,
पर्याप्त नाम कर्म का उदय की अपेक्षा
नहीं लिया है वहाँ पर। वही तो मैं कह रही हूँ, आप अभी भी नहीं समझे हैं। क्या समझे बोलो आप, उसमें बोलो, उसमें बोलो।
पंचेंद्रिय तीरेंच पर्याप्त लेंगे तो वहाँ पे निवृत्ति निवृत्ति अपर्याप्त को भी लेना है, तो वहाँ पे कार्मण का योग और औदारिक मिश्रण का योग वो भी लेना पड़ेगा।
पंचेंद्रिय तीरेंच पर्याप्त के सारे जो आलाप है वो सामान्य तीरेंच उनके समान, यानी सामान्य पंचेंद्रिय उनके समान हो गए, क्योंकि वहाँ जो पर्याप्त वाला भेद बता रहे हैं वो पुरुष वेद नपुंसक वेद की वेद के, यानी उसमें लब्धि अपर्याप्त को छोड़कर वाली बात है, और 485 पर जो बात है वो सामान्य जो पंचेंद्रिय तीर्यंच है उनमें से सारे पर्याप्त जीवों को लेना है, पर्याप्ति जो। हाँ तो वहाँ तो नेचुरली उसमें निवृत्ति अपर्याप्त को नहीं लेना है, क्योंकि वो सामान्य तीर्यंचों का प्रकार चल रहा है। पेज अपनी बात किसी चल रही थी, मनुष्य की बात चल रही थी। सामान्य मनुष्यों में हमने क्या क्या लिया, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्य। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त है, पर्याप्त नाम कर्म वाले मनुष्य, यानी जो गर्भ में आने वाले वो सब लेना, वो अब सम्मूर्छन वाले छोड़ देना,
उनका भी पर्याप्त।
हाँ उनका लेना, हाँ मनुष्य पर्याप्त ऐसी मार्गणा है तो मिश्र कायों को भी लेना, और जो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य लास्ट वाला जो है उसमें वो कारमाण और मिश्र वो दोनों लेगा केवल। अब जो मनुष्य पर्याप्त ये जो मार्गणा है, मनुष्य पर्याप्त यानी सामान्य से आ गए उसमें लब्धि यानी उसमें निवृत्ति दोनों आए, और अभी मनुष्य पर्याप्तों में पर्याप्त आलाप कहेंगे, मनुष्य पर्याप्तों में पर्याप्त आलाप,
पर्याप्त पूर्ण होने के बाद जो पर्याप्त,
हाँ वो अपर्याप्त आलाप, और मनुष्य पर्याप्तों में अपर्याप्त आलाप, ऐसे बाद में कहेंगे, अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं उसको, ख्याल में आया नहीं ना बात,
नहीं
इसीलिए पूछना ऐसा, क्योंकि पर्याप्त ये उन्होंने हेडिंग में आगे पीछे कर दिया तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था। अब यहाँ देखो 514 पेज पर, अभी अपने पहले सामान्य मनुष्यों के सभी हो गए, अब मनुष्य पर्याप्तों के वो पर्याप्तों के तो 14 गुण स्थान होते हैं, तो उसमें भी निवृत्ति अपर्याप्त की अपेक्षा वो अपर्याप्तों के भी सारे आलाप कह देना है, इसलिए यहाँ क्या कहा, मनुष्य पर्याप्तकों के भी आलाप कहने पर मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक मनुष्य सामान्य के आलापों के समान आलाप जानना चाहिए, अथवा अभी अथवा करके केवल पुरुष वेद नपुंसक वेद की बात करेंगे, अथवा वेद आलाप कहते समय स्त्री वेद के बिना दो वेद ही कहना चाहिए, क्योंकि सामान्य मनुष्यों से मनुष्य पर्याप्तकों में इतनी ही विशेषता है, क्योंकि मनुष्य पर्याप्तक जब कहते उसमें कथन करने की दो अपेक्षा आती है, या तो तीनों वेद वाले पर्याप्त जीवों को समझो, या स्त्री वेद वालों को अलग निकाल कर पुरुष वेद नपुंसक वेद वालों को ही समझो, हाँ मनुष्य में नहीं जाएगा, या उसको ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ सामान्य से सभी वेद वाले पर्याप्त जीव लिए और उसमें से एक मनुष्यनी का भेद अलग बताए, यानी ये दोनों ही प्रकार से कथन आता है शास्त्र में ही, इसलिए दो प्रकार से इसके भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर अभी कुछ कंफ्यूजन है,
मनुष्यनी का आलाप करेंगे तो उसको गुणस्थान 14 नहीं लेंगे ना उसमें,
मनुष्यनी में लेंगे
लेंगे
हाँ, परंतु स्त्री वेद का आलाप अगर होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना वेदों में भी एक एक वेद का आलाप कहेंगे, तो स्त्री वेद की अपेक्षा स्त्री वेद। हाँ आपका क्या प्रश्न है? देखो ये बात आलाप यानी हम किसके बारे में कथन चल रहे हैं, तो मनुष्य पर्याप्त कौन की बात चल रही है। पहले हमने सामान्य मनुष्यों में 14 गुणस्थान देखे, मनुष्य पर्याप्त कहने से उसमें या तो पुरुष वेद नपुसक वेद वाले ही लेना मात्र, या तीनों ही वेद वाले लेना, एक बात, क्योंकि स्त्री वेदी मनुष्यों की बात यहाँ अलग बताई। मनुष्यनी जब कहेंगे, मनुष्यनी मनुष्य गति का भेद है, उसमें 14 गुणस्थान कहेंगे, क्योंकि मनुष्यनी जो जीव है वो कैसे है, द्रव्य से पुरुष है, भाव से स्त्रियां जो है वो 9वें गुणस्थान तक वेद का, उनको स्त्री वेद का उदय है, बाद में अपगत वेदी होकर वो मुख जाती है, इसे मनुष्यनी कहने से 14 गुणस्थान, और स्त्री वेदी कहेंगे हाँ, यानी वेद मार्गणा में जब हम कहेंगे स्त्री वेदी जीवों के गुणस्थान बताओ तो 1 से 9। यही बात वो रेवती ने पूछे थे अभी, वो धवला का करे ना मराठी, क्योंकि यहाँ तो 9वें गुणस्थान तक लिया और वहाँ तो 14वें गुणस्थान, ये ऐसा क्यों कंफ्यूजन ये। हाँ हम किस अपेक्षा से बात करते हैं, जैसे हम कहते जीव समाज में अरिहंत भगवान को भी संगी पंचेंद्रिय कहते हैं, संगी मार्गणा में हम उसको संगी असंगी से रहित कहते हैं, इसलिए
इतना फर्क पड़ेगा मनुष्य पर्याप्त का। जब भी हम लोग सामान्य आलाप देख रहे हैं तो आप छठे गुणस्थान में हमको योग कौन से लेना पड़ेगा,
मनुष्य पर्याप्त कहने से
हाँ,
क्या मनुष्य नहीं कहने से
ना, मनुष्य पर्याप्त
आप ही बताओ,
वहाँ पे 9 और 2 11 हो जाएगी बराबर,
11 कैसे हो गए,
आहारक आहारक मिश्र हो जाएगा ना
हाँ,
तो 11 हो जाएगी बराबर,
कौन से चार निकाले,
वैक्रिय 2
औदारिक मिश्र
औदारिक और कर्मा वो निकाले। अभी नपुंसक वेद मनुष्य जब भी देखते हैं तब भी हम लोग को खाली
मनुष्य नपुंसक वेद का कोई मार्गणा
नहीं,
नहीं
है,
है
पर जब भी नपुंसक वेद की बात करके मनुष्य
है ही नहीं है,
नहीं पर
वेद मार्गणा में नपुंसक वेद कहो
हाँ, नपुंसक वेद में
अकेला नपुंसक वेद,
नपुंसक वेद में छठे गुणस्थान में हम लोग को 9 योग लेना पड़ेगा
हाँ, वहाँ क्योंकि आहारक है ही नहीं नपुंसक वेदी वालों के, ख्याल में आई ना, गुणस्थान 9 कहेंगे वहाँ पर, वो वेद मार्गणा में हम देखेंगे। देखो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ 514 को पढ़ रहे थे, मनुष्य पर्याप्त कहने के 2 अपेक्षा होती है, या तो तीनों वाद वेद वालों को पर्याप्त मनुष्यों को ले लो, या अकेले पुरुष वेद नपुंसक वेद वालों को ले लो, उसके अनुसार कथन अलग अलग होगा। तीनों वेदों को लेते हैं तो तीनों वेद लिखेंगे, और यदि मनुष्य पर्याप्त में 2 ही वेद लिखना है तो वहाँ स्त्री वेद के बिना अन्य 2 वेद लिखेंगे। विशेषार्थ इसी का फिर से, जब मनुष्यों के अवांतर भेद, अवांतर यानी जो सब डिवीजन, मूल भेद और अवांतर भेद यानी भेदों के भेद को अवांतर भेद कहेंगे, तो मनुष्यों के अवांतर भेदों की विवक्षा न करके पर्याप्त शब्द के द्वारा सामान्य से सभी पर्याप्त मनुष्यों का ग्रहण किया जाता है, यानी जो लभ्य पर्याप्त नहीं है और पर्याप्त नाम कर्म वाले है उन सभी को इंक्लूड कर दिया, तब पर्याप्त मनुष्यों में तीनों वेद वालों का ग्रहण हो जाता है, यानी उसमें इंक्लूड होते हैं। अतः इस अपेक्षा से पर्याप्त मनुष्यों के आलाप, आलाप यानी जो हम 20 प्ररूपणाओं का कथन कर रहे हैं उसको आलाप कहते हैं, सामान्य मनुष्यों के समान बतलाए गए हैं, परंतु जब मनुष्यों के अवांतर भेदों में से मनुष्य पर्याप्तकों का ग्रहण किया जाता है तब मनुष्य पर्याप्तक पद से यानी उस शब्द से पुरुष और नपुसक वेदी मनुष्यों का ही ग्रहण होता है, क्योंकि स्त्रीवेदी मनुष्यों की आगम में मनुष्यनी संज्ञा निर्दिष्ट की गई है। स्त्रीवेदी मनुष्यों के लिए अलग से बताया है। देखो, स्त्रीवेदी कहने से द्रव्य भाव से स्त्रीवेदी तो आ ही गए, परंतु द्रव्य से पुरुष है और भाव से स्त्री है, उनको भी उसमें इंक्लूड कर दिया है, और उन्हीं की अपेक्षा से 14 गुणस्थ। और यहाँ जब जब भी वेद मार्गणा में द्रव्य की बात करते हैं, भाव की ही बात करते हैं। मनुष्य के अवांतर भेदों में मनुष्य पर्याप्त शब्द पुरुष और नपुसक वेदी मनुष्यों में ही रूढ़ है, यानी रूढ़ है ने रूढ़ी से उन्हीं को इंक्लूड कर दिया है, इसलिए तब हमको स्त्रीवेदी नहीं कहना है। इसलिए इस अपेक्षा से मनुष्य पर्याप्तकों के आलाप कहते समय स्त्री वेद को छोड़कर आलाप कहे है, इसलिए उनकी बात सब ऐसे ही घटित होती है। अब यहाँ मनुष्यनियों के आलाप डायरेक्ट बता रहे, क्योंकि हमने जो पहले पढ़ा है वही बात इसकी, इसलिए दोबारा उन्होंने नहीं लिखी है। मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, अब मनुष्यनी कह दिया, ये तो द्रव्य से कोई भी हो, भाव से बात करनी है, स्त्रीवेदी जीव है। और ये हमने बात देखी तो जन्म से जो वेद होता है वही मरण तक रहता है, या वो श्रेणी चढ़ जाए तो अवगत वेद हो जाए। तो मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, अभी हमको गुणस्थान नक्की करने हैं, तो 14 गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त है ना, अपर्याप्त को लिया ना, क्योंकि ये श्रीवेदी है ने पर्याप्त नाम कर्म वाले जीव है, और उनके ये कौन से गुणस्थान हो गए अपर्याप्त अवस्था में? अश्विन भाई,
दूसरा
चौथे में तो नहीं होगा, चौथे भाव से लेना है, अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुणस्थान कैसे होगा, क्योंकि सम्यक के साथ जन्मने वाला स्त्री वेद नहीं है, पहला दूसरा होगा ना,
दूसरा भी होगा।
हाँ,
अरे तेरवा भी लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा,
हाँ तेरहवे में होगा वो, अभी हम पढ़ेंगे तभी ख्याल आएगा। देखो
ऐसे हम लोग द्रव्य से कोई भी वेद लेते हैं,
द्रव्य से कोई पर जो ऊपर जाने वाले जो है, हाँ। द्रव्य से स्त्री है, हाँ। वो पांचवे गुणस्थान तक की है। जब हम 14 गुणस्थान कहते हैं तो द्रव्य से पुरुष की ही बात करते हैं। इट इज टू बी अंडरस्टूड, ये भी है, जो द्रव्य से स्त्री है पांचवे गुणस्थान के ऊपर का उसका पुरुषार्थ ही नहीं होता, परंतु द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री वेदी है, उनके तो सभी पुरुषार्थ होकर वो मोक्ष भी जा सकते हैं।
क्या
अपर्याप्त में ऐसा है? अपर्याप्त किसके हो सकता है? जो मरकर उसमें आता है, तो ये नियम है, जो सम्यक दर्शन के साथ मरकर अन्य भाव में जाता है, अन्य भाव में नहीं, यानी मनुष्य मरकर देव में जाएगा, देव मरकर अभी हमको मनुष्य की बात करनी है, तो मनुष्य में मरकर आने वाले नरक से आए हो या देव से आए हो, सम्यक से आए हैं, तो वो द्रव्य से भी और भाव से भी पुरुष वेदी ही होते हैं।
तो
कोई बात नहीं, अभी उस नियम है, वेद तो हर समय कुछ नहीं, मिथ्या दृष्टि है तो अन्य अन्य वेद बांध ही रहा है, ख्याल में है ना बात। हाँ, ये उदय के भी कुछ नियम होते हैं। हाँ, देखो हमने 14 गुणस्थान देखे, संगी पर्याप्त को भी लेना, असंगी अपर्याप्त को भी लेना, ये दो जीव समास, 6 पर्याप्तिया 6 अपर्याप्तिया, 10 प्राण 7 प्राण, चारों संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा रूप भी स्थान है, क्योंकि 10वें तक संज्ञा है, 11वें 12वें 13वां 14वां, ये कुछ नहीं समझ में आए ना तो पूछना है। मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, कार्मण काय योग, ये 11 योग तथा अयोग रूप भी स्थान है। अब देखो जरा मनुष्य सामान्य की बात निकालो,
अपराध में पहला दूसरा और तीसरा गुना कर
लेना। देखो देखो 505 में इसमें क्या डिफरेंस है, मैं बताना चाहती हूँ। हाँ 505 सामान्य मनुष्यों के सामान्य अलग, 504 देखना, 504 योग में मैं डिफरेंस बताना चाहती हूँ। यहाँ 11 योग लिए, वहाँ 13 लिखे थे, खाली डायरेक्ट टेबल भी देखो 504 टेबल पेज पर 100 नंबर का जो टेबल है, योग में केवल वैकृत ग्रीत को छोड़ा था, सामान्य मनुष्यों में आहारक आहारक अंगोपांग दोनों को लिया था, त्रिवेदी में वो आहारक शरीर बनाने का कार्य नहीं होता, वो दो छोड़ दिए, ख्याल में ना, परंतु पर्याप्त अपर्याप्त के सब लिए, समझ में आई बात। टेबल में देखना आप, योग में कौन कौन से लिए थे, 13 लिए, वैकृत वैकृत अंगोपांग को, वैकृत वैकृत मिश्र को छोड़ा था, बाकी सभी लिए थे। श्रीवेदी मनुष्यों में
और दो छोड़ा,
हाँ, क्योंकि उनके आहारक शरीर का बनाने का कार्य नहीं होगा, तो उनके आहारक आहारक मिश्रक योग नहीं होगे, इसलिए यहाँ 11 ही लिए, है ना, तथा योग रूप भी ले लिया। आगे लिखा है इन मनुष्य नियम के, मैंने पढ़ा नहीं था, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, ये दो योग नहीं होते, इसलिए सामान्य से इनमें डिफरेंस है। पर्याप्त मनुष्यों में उनको लेंगे हम, क्योंकि उनके सारे आलाप सामान्य के समान थे, है ना।
517
हाँ 517 पर होगी ना, आगे लिखा
योग
11 लिखे हैं, और अयोगी को भी लिया है, यानी एक है 11 की अपेक्षा, एक है 9 की अपेक्षा, पर्याप्त आलाप है। इसलिए सामान्य में 11 लिए ना, अयोग चाहिए वहां पर, अयोग नहीं लिखा है, अयोग भी लिखना है, हमने वो टेबल नहीं देखा था अभी। देखो मनुष्य स्त्रियों के सामान्य आलाप पेज नंबर 516 चार्ट नंबर 114 उसमें अयोगी भी लिखना पड़ेगा। अभी हम पढ़ना जो बाकी था उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। शंकाकार पूछ रहे हैं मनुष्य नियोग के आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग नहीं होने का क्या कारण है। समाधान, यद्यपि जिनके भाव की अपेक्षा स्त्रीवेद और द्रव्य की अपेक्षा पुरुषवेद होता है, वे भाव स्त्री जीव भी संयम को प्राप्त होते हैं, ये मुनि बनते मोक्ष भी जा सकते, किंतु द्रव्य की अपेक्षा स्त्रीवेद वाले मनुष्य संयम को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वे सचेल अर्थात वस्त्र सहित होते हैं। फिर भी भाव की अपेक्षा स्त्रीवेदी और द्रव्य की अपेक्षा पुरुषवेदी संयमधारी मनुष्यों के आहार रिद्धि उत्पन्न नहीं होती, उनके नहीं होती जो भाव की अपेक्षा स्त्रीवेदी है, किंतु द्रव्य और भाव इन दोनों ही वेदों की अपेक्षा से पुरुष वेद वाले मनुष्यों के ही आहार रिद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए स्त्रीवेद वाले मनुष्यों के आहारक द्विक के बिना 11 योग कहे गए हैं। अब योग आलाप के आगे बता रहे, उसके आगे स्त्रीवेद तथा अपगत वेद स्थान भी होता है। यहाँ भाव वेद से प्रयोजन है, द्रव्य वेद से नहीं। इसका कारण यह है, यदि यहाँ द्रव्य वेद से प्रयोजन होता तो अपगत वेद रूप स्थान नहीं बन सकता था, क्योंकि द्रव्य वेद 14वें गुणस्थान के अंत तक होता है। शरीर का जो चिन्ह है, शरीर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जो पांच इंद्रियां बनी है, जो कुछ शरीर के अंग वैसे ही रहेंगे, परंतु अपगत वेद भी होता है। इस प्रकार का वचन निर्देश, यानी वचन का जो कथन है, 9वें गुणस्थान के अवेद भाग से किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ भाव वेद से ही प्रयोजन है, द्रव्य वेद से नहीं। वेद आलाप के आगे अभी कषाय में चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी होता है। ये कषाय 10वें तक है। मनःपरे ज्ञान के बिना सात ज्ञान, देखो इनके भी मनःपरे ज्ञान नहीं होता त्रिवेद वालों को। हाँ, उनके ये भी, यानी इनके ना आरक बात होगी, ना पर्यार विशुद्धि होगी, और ना ही मनःपरे ज्ञान होगा। त्रिवेदी वालों को केवल ज्ञान हो सकता है। तो मनःपरे ज्ञान के बिना सात ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम के बिना छह संयम। ये चौथे तक असंयम है, फिर संयमासंयम है, और फिर सामयिक छदोपस्थान 9वें तक है, फिर सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। चारों दर्शन द्रव्य और भाव से छह लेशाएं तथा अलेशा रूप भी स्थान है। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक छहो सम्यक्त्व संगिनी तथा संगिनी और असंगिनी इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान होता है। ये 13वां 14वां गुणस्थान। आहारिणी अनाहारिणी, साकार उपयोगिनी अनाकार उपयोगिनी तथा साकार और अनाकार उपयोग से युगपद उपयुक्त भी होती है, केवल ज्ञान की अपेक्षा। हाँ, वो बात यहाँ नहीं लेंगे। औपशमिक आहारक लिया ना, नहीं पांच कहाँ लिया, स्त्रीवेद को नहीं लेना वहाँ पर। आहारक योग जो है, हाँ रिद्धि नहीं कहना आहारक। देखिए रिद्धि होना अलग बात है, और उसका जो आहारक शरीर बनाना वो कार्य अलग है, यानी उसके आहारक का योग नहीं होगा, आहारक आहारक मिश्र का योग नहीं होगा, यानी आहारक शरीर बनाने का कार्य नहीं होगा, उसका उदय नहीं होगा, मनःपरे ज्ञान नहीं होगा, परिहार विशुद्धि संयम नहीं होगा, और औपशमिक सम्यक्त्व नहीं होगा। पर यह स्त्रीवेदी है, औपशमिक सम्यक्त्व तो होता है, परंतु अन्य तीन बातें नहीं होगी।
त्रिवेद वाला जी जो भी 7वें और 8वें गुणस्थान में होता है, तभी उसको अरे आहारक शरीर का बंध हो सकता है।
बंध होने में कोई हर्जा नहीं है, जैसे हमने त्रिवेदी को तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। जो मनुष्य नहीं जीव है, उसको उस पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हो सकता।
हाँ।
वो यहाँ से फिर मरकर देव में जाएगी, कोई नरक आयु बांधे तो नरक में जाएगी, और वहां से पुरुष होकर फिर यहाँ पुरुष ही में जन्म होकर तीर्थंकर होगा। ये मल्लिनाथ तीर्थंकर को तो श्री कहने वाले कितने क्या है वो समझ लेना भी। ये तो नियम है, श्री वेद वाले को बंद हो सकता है, उदय नहीं हो सकता, पुरुष ही होता है, ये नक्की है, नियम है। क्योंकि हमने देखा सम्यक तो सही तो जन्म ले रहे हो, और मान लेते। हाँ,
स्त्री वेद अपनी जो बात चल रही है वो काहे की चल रही है,
मनुष्य नहीं,
भाव स्त्री से,
भाव से जो स्त्री है,
हाँ, उनको परिहार विशुद्धि भी नहीं
होगी, नहीं
होगी, और मनःपरे ज्ञान भी
नहीं होगा,
ये तीन ही बात है,
और आहारक भी नहीं होगा, आहारक शरीर भी नहीं होगा, अभी हमने देखा ना,
ना, ना, ना।
योग में भी आहारक बिना लिए योग,
मैंने वही पूछा था आपसे, तो आपने बताया,
आपने चार बातें पूछी थी।
हाँ।
चार बातें जो एक साथ नहीं होती, उसमें औपशमिक सम्यक्त्व को भी लिया था,
तो यहाँ पर भी स्त्री वेद वित मन परे ज्ञान
नहीं
है, विशुद्धि
हाँ।
और आहार शरीर
हाँ।
ये भी नहीं होगा, तो ये चारों बातें इसमें भी आ गई,
इसमें औपशमिक सम्यक्त्व है, वो जो नियम है ना उन चारों बातों, वो आपस में नहीं होता,
एक साथ दो नहीं होते, चार में से कोई
उसमें
भी
उसमें से हाँ, नहीं होते।
लेकिन इधर भी ऐसा ही नियम होगा, जो स्त्रीवेदी है,
स्त्रीवेदी को ये तीन नहीं होते, ऐसा नियम करना यहाँ पर, और वो चारों आपस में नहीं होते, वो नियम अलग, क्योंकि उसमें औपशमिक सम्यक्त्व को भी इंक्लूड करना है।
मैं आपसे सहमत हूँ
हाँ।
लेकिन मेरा ये कहना है कि औपशमिक सम्यक्त्व को हटाकर उसकी जगह हमने स्त्रीवेद रखा, इनको ये चार बातें एक साथ नहीं होती, ऐसा भी कह सकेंगे
हाँ,
कि नहीं?
कहो कहो
कहो कहो
स्त्रीवेदी के लिए है ही नहीं है। क्या भाववेद का तो पता चलता है ना, क्योंकि मिथ्यात्व से ऊपर गए हैं, भाववेद का तो पता है उनके, अपने भावों का तो पता है, जो बुद्धिपूर्वक वो तो बात जो श्रेणी में होगी तब की बात है, बिल्कुल उनको किसके प्रति अट्रैक्शन है उनको पता चलता है ना, पुरुष होते हुए भी पुरुष के प्रति अट्रैक्शन है, तो भाव से स्त्री है वो।
यहाँ पे एक बात है, केवल ज्ञान चित्त विशुद्धि हो सकती है, अकषाय हो सकते है वही जीव, पर उसको परिहार विशुद्धि का स्थान प्राप्त,
क्योंकि वो अकषाय कब होते, जब वेद रहित होते तब।
अच्छा यहाँ पे वेद का उदय, अच्छा वेद का उदय,
वेद वेद के उदय होते हुए वो बातें नहीं होती थी। हाँ देखो अभी ये तो उन्हीं पर्याप्त मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, एक्चुअली मनुष्यनियों के पर्याप्त आलाप चाहिए था, मनुष्यनियों के पर्याप्त आलाप कहने पर, क्योंकि ये नाम देने से थोड़ी गड़बड़ी होती है, आगे टेबल में उन्होंने सही नाम दिए हैं, ऊपर भी है ना, तासिम चे वो पज्जति नंबर न माने, यानी उन्हीं के ने मनुष्यों के पर्याप्त आलाप कहने पर। अभी जैसे हमने उसमें पर्याप्त आलाप है, परंतु अभी यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त को नहीं लेना है, तो 14 गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास पढ़ू ना आगे, आप देख रहे हाँ, छहो पर्याप्तियां, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, वैकृत का योग, वैकृत मिश्र का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, इन चार योगों के बिना 11 योग, अथवा उपर्युक्त चार और औदारिक मिश्र कार्मण का योग, इन 6 योगों के बिना 9 योग, अथवा क्यों किया यहाँ पर, पर्याप्त आलाप में तो यह अथवा अथवा की जरूरत ही नहीं थी, तथा अयोग स्थान भी होता है। एगार से जोगा नवो वा जोगो वा थी, यहाँ उसकी बात डालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अपर्याप्तों के कहने पर वहां पर 2 योग लिए, मनुष्यनियों के पर्याप्त आलाप कहते हुए वो 11 क्यों कहे पता नहीं। अच्छा अच्छा ओ 14वीं गुणस्थान की बात है,
तो हो जाएगा
ना, फिर भी उसको 14वें नहीं 13वें में, परंतु उसको हमने देखा था ना, उसको पर्याप्त भी कह सकते हैं, अपर्याप्त भी कह सकते हैं। ये बात पहले आई थी, समुद्गत की अपेक्षा, अथवा कहकर ये समुद्घात की अपेक्षा, समुद्घात की अपेक्षा, केवली समुद्घात की अपेक्षा। यानी वो विग्रह गति वाला नहीं लेना वहां पर, इसलिए उन्होंने ये अथवा कहकर उसको बता दिया। अब उसके बाद योग के बाद स्त्री वेद तथा अपगत वेद स्थान भी होता है, चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी होता है, मन परे ज्ञान के बिना सात ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम के बिना छह संयम, चारों दर्शन द्रव्य से और भाव से छह लेशाएं तथा अलेश आहारक नहीं बताया, आहारक बिना बताया, यानी वैकिरिक द्विक और आहारक द्विक बिना। ऐसा आप मत कहो, ये रूल नहीं है शास्त्र में। जो चार बातें एक साथ नहीं होती उसकी बात अलग से बताई है उन्होंने, क्योंकि इसमें वो औपशमिक सम्यक तो कोई इंक्लूड नहीं हो रहा है। स्त्री वेदियों को ये नहीं होती ऐसा कहना ठीक है। हाँ, ये हो गया ना, हमने आया है पेज नंबर 517 पर। अलेशा स्थान भी होता है, मिला? भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक छहो सम्यक्त्व, संगिनी तथा संगिनी और असंगिनी विकल्प से रहित भी स्थान होता है, ये 13वां 14वां वाला। आहारिणी अनाहारिणी, ये अनाहारिणी 14वां गुणस्थान है। साकार उपयोगिनी अनाकार उपयोगिनी तथा साकार अनाकार, नहीं नहीं नहीं, अनाहारिणी में 14वां गुणस्थान पर्याप्त है ना। 13वें में अगर योग के जैसे वहां लेना है तो ले सकते हैं, परंतु 14वां गुणस्थान अयोग वाला है ना, वो तो रेगुलर पर्याप्त ही जीव है। नाम कर्म का उदय ना, पर्याप्त नाम कर्म का। हाँ, यहाँ अगर हमने योग में उसको लिया तो वहाँ ले सकते, वो अथवा कह के कहना पड़ेगा। तथा साकार अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होती है। विशेषार्थ पर्याप्त सामान्य मनुष्यों के 13 अथवा 10 योगों के होने का स्पष्टीकरण पहले कहे आए हैं, वहां पर भी यहाँ लिया था और वहां उसकी चर्चा भी की थी। उसी प्रकार पर्याप्त मनुष्यों के 11 अथवा 9 योगों के संबंध में भी जान लेना चाहिए, वहां पर भी 13 लिए थे क्योंकि वो आहारक वगैरह को भी लिया था वहां पर। यहाँ इतनी विशेषता है कि आहारक रिद्धि नहीं होती है, रिद्धि की बात की, अतएव इनके आहार और आहार मिश्र आहारक चाहिए, आहारक और आहारक मिश्र, ये दो योग नहीं पाए जाते। इस प्रकार मनुष्यों के पर्याप्त अवस्था में 11 अथवा 9 योग ही होते हैं। ये दो क्यों कहा उसका कारण बता दिया, उन्हें अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर। अभी जब सामान्य मनुष्यों में अपर्याप्त आलाप कहते हैं तो पहला लेते हैं, दूसरा लेते हैं, चौथा लेते हैं, छठा लेते हैं, 13वां लेते हैं। मनुष्यों में अगर हमको अपर्याप्त आलाप कहने हैं तो पहला, दूसरा और 13वां, तो उन्हें अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर। एक्चुअली यहाँ पर उन्हीं मनुष्यों के अपर्याप्त आलाप कहने पर ऐसा चाहिए, ये हेडिंग में जरा सुधारना, क्या करेक्शन, मिथ्या दृष्टि हेडिंग, हाँ, सासाधन समय दृष्टि और सहयोग के लिए तीन गुण स्थान, एक संज्ञ अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है। मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग दो योग, स्त्री वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है, चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है, क्योंकि हमने तेरहवें को भी लिया है ना। हाँ, यानी जो हम आगे की बातें कहेंगे तो हमको गुणस्थान और जीव समास पर लक्ष्य देना है, तो आगे की बातें सरल होती है। कुमति और कुशरुत ये दो अज्ञान पहले दो गुण स्थानों में और डायरेक्ट तेरवे में सहयोग गुण स्थान की अपेक्षा केवल ज्ञान, इस प्रकार तीन ज्ञान। प्राण में अपर्याप्तों के दो प्राण लिख सकते हैं हम वहां पर, हाँ सात प्राण लिखे ना, वहां दो प्राण भी लिख सकेंगे हम। क्योंकि संयोग के विली को इंक्लूड कर ही दिया है ना यहाँ पर, मनुष्यों के अपर्याप्त आलाप, वो 116 टेबल में सात प्राण लिखा उसमें दो प्राण भी लिख दो। अभी आए हम ज्ञान तक आए थे ना, तीन ज्ञान हुए थे, असंयम और यथाख्यात विहार शुद्धि ये दो संयम, चक्षु अचक्षु और केवल ये तीन दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा, भाव से देखो मिथ्या दृष्टि के लेना और केवली के लेना, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशा अथवा शुक्ल लेशा के साथ उक्त तीनों लेशाएं मिलकर चार लेशाएं, क्योंकि तेरहवें गुणस्थान वाले की भी लेशा बतानी है, तीन अशुभ, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि साधन वाले को तीन अशुभ होती है मनुष्यों में, और वो केवली के शुक्ल लेशा चार लेशा हो जाएगी, अशुभ तीन और एक शुक्ल लेशा। किसमें? हाँ, क्योंकि पहले दूसरे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ ही होती है मनुष्यों की, भव्य सिद्धि अभव्य सिद्धि मिथ्यात्व सासाधन और क्षयिक सम्यक्त्व, ये तीन सम्यक्त्व संगिनी और अनुभय, यानी संगिनी असंगिनी विकल्प रहित स्थान भी होता है, आहारिणी अनाहारिणी, क्योंकि विग्रह गति को भी लिया और वहां पहुंचने पर मिश्र को भी लिया ना, साकार उपयोगिनी अनाकार उपयोगिनी तथा उभय उपयोगों से उपयुक्त होती है तेरवे की अपेक्षा। वहां पर भी लेना चाहिए था दस सात और दो, उसमें चार और दो दोनों डालने पड़ते थे। हाँ, अभी हम देखो कहाँ गए, अपर्याप्तों के हो गए ना, अभी 518 पेज पर आए।
मनुष्य नहीं अपर्याप्त में हम लोग तेरहवें गुणस्थान में प्राण कितने लेंगे, खाली दो ही लेना चाहिए ना,
बताया था ना आपको, हमने ऐड किया भी था टेबल में। अब देखो मिथ्या दृष्टि मनुष्यनियों के सामान्य आलाप कहने पर, अब मनुष्यनियों में गुणस्थान कितने देखे हमने, 14। अभी उसमें पहले गुणस्थान की बात करेंगे। सामान्य कहने से उसमें पर्याप्त भी आए अपर्याप्त भी आए। एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त दो जीव समास, छह पर्याप्तिया छह अपर्याप्तिया, दसो प्राण सात प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, चारों मनोयोग चारों वचन योग, ये चारों की बात कॉमन ही चाहिए। हाँ मनुष्य नहीं है ना, लब्धि अपर्याप्त में तो नपुंसक वेद होता है। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये 11 योग। स्त्री वेद, देखो यहाँ वेद में डिफरेंस है ना, बाकी तो जो सामान्य मनुष्य पर्याप्त तो उसके समान है। चारों कषायें, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु अचक्षु दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिनी, आहारिणी अनाहारिणी, साकार उपयोगिनी अनाकार उपयोगिनी होती हैं। जो हमने जो पर्याप्त मनुष्यों के तो सामान्य के समान कहा, और सामान्य मनुष्यों में भी हमने एक एक गुणस्थान देखे थे, तो उसमें केवल ये वेद में ही डिफरेंस होगा। देखो 508 पेज पर, नहीं सामान्य मनुष्यों के मिथ्या दृष्टियों के 507 पेज पर, 507 पेज पर सामान्य मनुष्य मिथ्या दृष्टियों के आलाप देखे थे हमने। वेद में तीन वेद थे, बाकी तो ऐसा ही था सब, और यहाँ स्त्री वेद है, फिर भी उन्होंने पूरे आलाप फिर से दोबारा लिखे। अब उसी में अभी ये जो मिथ्या हमने मनुष्यनियों के मिथ्या दृष्टि के आलाप देखे, मिथ्या दृष्टि सामान्य, अब यहाँ पर मनुष्यनियों के मिथ्या दृष्टि पर्याप्त आलाप, यहाँ पर भी वो मनुष्यनियों के पहले चाहिए मिथ्या दृष्टि पर्याप्त आलाप कहने पर। एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, अब यही बात है केवल योगों में उसके ये बात होगी, वेद में हाँ। देखो एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, चारों मनोयोग चारों वचन योग और औदारिक काय योग नव योग, स्त्री वेद, चारों कषायें, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु अचक्षु दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त मनुष्य यानी मनुष्यनियों के मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त आलाप कहने पर, एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तिया सात प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, अब योग में औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग, स्त्री वेद, चारों कषायें, कुमति और कुशरूपी ये दो अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु दो दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत ये तीन अशुभ लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिनी, आहारिणी अनाहारिणी, साकार उपयोगिनी अनाकार उपयोगिनी होती है। जैसे हमने सामान्य में देखे थे, यहाँ केवल वेद का रिफरेंस है, स्त्री वेद ही लिखना है, बाकी तो जो पर्याप्त के अपर्याप्त के जो जितने योग होते वैसा ही है। अब सासाधन सम्य दृष्टि मनुष्यनियों के सामान्य आलाप कहने पर, यानी मनुष्यनियों के सासाधन सम्य दृष्टि के आलाप, तो उसमें पर्याप्त भी हो गया अपर्याप्त, यानी सासाधन के साथ मरकर कोई स्त्री में भी मनुष्य में भी जन्म ले सकता है। एक सासाधन गुण चारों गति से मरकर इसमें आ सकते हैं। एक सासाधन गुणस्थान संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त दो जीव समास, क्योंकि सामान्य कहा है ना छह पर्याप्त या छह अपर्याप्त या दसों प्राण सात प्राण चारों संज्ञा है। मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय चारों मनोयोग चारों वचन योग औदारिक का योग औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग ये ग्यारह योग। स्त्री वेद चारों कषाय तीनों अज्ञान, क्योंकि पर्याप्त भी लिया ना इसलिए विभंग ज्ञान वाला भी लिया इसमें। असंयम चक्षु और अचक्षु दो दर्शन द्रव्य और भाव से छहो लेशाए अभी भव्य ही लेना भव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक्त्व संगीनी आहारिणी अनाहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। ये नीचे 120 नंबर के टेबल में बताया है। अब उसी में पर्याप्त को लेना है पर्याप्त सासाधन सम्यक् दृष्टि ऐसा लिखे मनुष्य नियम के पर्याप्त सासाधन सम्यक् दृष्टि के आलाप या सासाधन सम्यक् दृष्टि पर्याप्त आलाप मनुष्य नियम के सासाधन सम्यक् दृष्टि पर्याप्त आलाप कहने पर्याप्त आलाप ठीक है। अब ये पर्याप्त पर्याप्त कहना उनको तो उसके योग उसके जो कुछ द्रव्य से लेशा वगैरह डिफरेंस एक सासाधन गुणस्थान एक संगी पर्याप्त जीव समास छह पर्याप्त या दशो प्राण चारों संज्ञाएं मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय चारों मनोयोग चारों वचन योग और औदारिक का योग नव योग। स्त्री वेद चारों कषाय तीनों अज्ञान पर्याप्त इसलिए तीनों अज्ञान लिए। असंयम चक्षु और अचक्षु दो दर्शन द्रव्य और भाव से छह लेशाएं भव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक्त्व है संगीनी है आहारिणी क्योंकि पर्याप्त जीव लिया ना यहाँ पर साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब अपर्याप्त सासाधन सम्यक् दृष्टि मनुष्य नियम के यानी मनुष्य नियम में सासाधन सम्यक् दृष्टि लेना परंतु अपर्याप्त लेना। एक सासाधन गुणस्थान एक संगी अपर्याप्त जीव समास अपर्याप्त है तो छह अपर्याप्त या सात प्राण चारों संज्ञाएं मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस का है। अब योग में औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग दो ही योग या औदारिक मिश्र का यो रह गया बीच में। स्त्री वेद चारों कषायें कुमति और कुश्रुत तो ये दो अज्ञान यहाँ विभंग ज्ञान नहीं लेना। असंयम चक्षु और अचक्षु दो दर्शन द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं देखो भाव से कौन सी तीन अशुभ लेना है कृष्ण नील और कापोत ये तीन अशुभ लेशाएं हमने देखा था मनुष्य और तिव्यंशों में जो पहले दूसरे गुणस्थान में जन्म लेता है तीन अशुभ में ही जन्म लेता है नियम है। भव्य सिद्धिक सासाधन सम्यक्त्व संगीनी आहारिणी अनाहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। मिथ्यात्व में चले जाते हैं क्योंकि सासाधन का काल कितना छोटा है एक तो अधिक से अधिक छह आवली तो वहाँ कभी भी मर सकता है एक समय के बाद। हाँ तो ये शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले मिथ्यात्व में जाएगा ही नियम से उससे ज्यादा इसका काल नहीं होता। ये जो कर्म कांड के कुछ नियम है कहाँ कितने प्रकृतियों में दूसरे वाला कभी जाता ही नहीं ऊपर हाँ वो कहीं पर भी हो मरे या नहीं मरे जो चौथे से छूट कर दूसरे में आया है उसका एक ही रास्ता है पहले में जाना वो गिरने का ही गुणस्थान है और उसमें नीचे ही गिरता है ये छठा गुणस्थान भी ऊपर से गिर कर आता है, परंतु ऊपर से चढ़ भी सकता है, दूसरे से कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता, तीसरे से चढ़ सकता है, तीसरे से चौथे में, डायरेक्ट ऊपर भी नहीं चढ़
पहले से चौथे में और सातवें में
पांचवे भी जा सकता है, पहले से तीसरे में जा सकता है, पहले से चौथे में जा सकता है, पहले से पांचवे में जा सकता है, पहले से सातवें में जा सकता है, पहले से दूसरे में कोई नहीं जाता और पहले से छठे में भी कोई नहीं जाएगा। तो ये साधन के पर्याप्त और अपर्याप्त देख लिए। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, अब इसमें एक पर्याप्त का ही आलाप लेना है, अपर्याप्त इसमें होते नहीं है। तो एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, ये मिथ्या दृष्टि की बात कॉमन ही चाहिए। एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां, दसों प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय। अब चार मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, नव योग, स्त्री वेद। देखो ये एक डिफरेंस है, तो उसके लिए उन्होंने फिर दोबारा सब कुछ लिख लिया है ना। चारों कषायें, तीनों अज्ञानों से मिश्रित आदि के तीन ज्ञान, क्योंकि ये तीसरा गुणस्थान है, मिश्र तीन ज्ञान हो गए। असंयम, चक्षुर अचक्षु दो दर्शन, द्रव्य भाव से छह लेशाएं, तीसरा है तो भव्य सिद्धि की है, सम्यक मिथ्यात्व, संगीनी, आहारिणी, क्योंकि पर्याप्त ही होते हैं, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती हैं। जब हम यहाँ सिखाते थे ना पहले, तो हर एक को पेपर पर लिखना पड़ता था, वो जीवकांड भी लिया और इसको भी लिया था, यानी कोई बोले नहीं, अपना अपना उत्तर लिख लेना। हाँ, एक मजा आती थी, वो कहाँ कहाँ भूल होती थी। हाँ, एक होने की बात करेंगे, एक को पकड़ते तो दूसरा कुछ है, योग को पकड़ते तो लेसा छूटती थी, ऐसा कुछ ना कुछ होता था। ऐसा क्या, एक साथ हम पढ़ते भी हैं और आपस में बोलते हैं तो जल्दी ख्याल में आता है, अपना हुआ है, ये पुस्तक भी हुई है और जीवकांड भी पहले हमने ढूंढारी में पढ़ा, फिर हिंदी में पढ़ा। इन लोगों का बहुत बार हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा
लिखा है
तो। अब भी आती थी तभी।
हाँ, लिखने में ना।
हाँ हाँ, जीवकांड को भी लिया था हमने वैसा।
हाँ, ये सब ना ऐसा लिखते थे,
बीज प्ररूपणा है क्या सब।
हाँ,
हाँ,
हाँ, हाँ, वही
है। अच्छा है।
हाँ, मैं
ये सुबह लिया था ना हमने जीवकांड,
शाम को लिया,
शाम को आप आते थे क्या। हाँ हाँ, शाम को जीवकांड लिया था यहाँ पर। हाँ बराबर, हाँ तभी लिया था, और उसके पहले हमने सुबह भी लिया था, वो तो बहुत पहले लिया था, सब तो बहुत निश्चय की होती थी सबकी। हाँ, ये समय मिथ्या दृष्टि हो गया। असंय समय दृष्टि मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, अभी इसमें क्या विशेषता है, मात्र पर्याप्त ही हो गए। एक अविरत समय दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, नव योग, स्त्री वेद, चारों कषायें आदि के तीन ज्ञान। अभी ज्ञान है ना, मति शुद्ध अवधि ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान है, चौथा गुणस्थान है। असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, क्योंकि पर्याप्त जीव लिया इसलिए, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षौपशमिक, के तीन सम्यक। देखो क्षायिक कहा, क्योंकि भाव से स्त्री वाले लिए ना यहाँ पर, तो ऐसा जीव क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करेगा, तभी तो वो सुश्रेणी चढ़ के मुख जाएगा, क्योंकि जन्म से तो स्त्री वेदी वाला है, भाव से, भाव से सॉरी द्रव्य से तो पुरुष है, भाव से स्त्री है, और क्षायिक समय तो प्राप्त करके उसी भाव में मोक्ष जाने वाला है। द्रव्य से स्त्री उसको नहीं, उसको क्षायिक नहीं कहा है, द्रव्य से स्त्री वाले को, द्रव्य से स्त्री वाले को नहीं है। मनुष्य नहीं को हो सकता है। नहीं 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 वही भाव में मोक्ष नियम नहीं है, हो सकता है उसके भी और भी भाव।
विवेक तो भी साइक में नहीं, विवेक तो साइक नहीं होता,
होता है ना द्रव्य से स्त्री को नहीं होता।
हाँ वही,
क्योंकि उसमें भी दो मत आते हैं, जैसे जीव कांड में उसको लिया था आर्य का को होता है वगैरह करके, परंतु उसका निषेध भी किया हुआ है। हम इसको तो ये भाव से स्त्री को होता है ऐसा यहाँ ले रहे, हो सकता है उसी भाव में मोक्ष भी जा सकती है। आपने देखा 14 गुणस्थान होते हैं, तो उसने तो क्षायिक तो उसी भाव में प्राप्त किया है और उसी भाव में मोक्ष जा सकता है, या जैसे अन्य क्षायिक जो उनके अन्य भाव वाक्य वैसे उसके भी हो सकते हैं। ये हो गया ना, हाँ भाव से स्त्री तभी तो 14 गुणस्थान हो गए। संगीनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब पांचवा गुणस्थान संयता संयत मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, एक देश विरत गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दसो प्राण, चारो संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक का योग, ये नव योग, स्त्री वेद, यही पर डिफरेंस है, बाकी तो अन्य के समान है। चारों कषायें आदि के तीन ज्ञान, संयमा संयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से तो शुभ ही हो गया, अभी पांचवा गुण स्थान है, तो भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक शायिक और क्षौपशमिक के तीन सम्यक्त्व, संगीनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। प्रमत्त संयत मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, यानी उसमें वो आहारक वाली बात नहीं होगी, ये डिफरेंस है इसमें। एक प्रमत्त संयत गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दशो प्राण, चारो संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारो मनोयोग, चारो वचन योग और औदारिक का योग, ये नौ योग होते हैं। नौ योगों के होने का कारण यह है कि स्त्री वेद और नपुसक वेद के उदय होने पर आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, मनपर्य ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम नहीं होते, यानी इन वेद वालों को ये नहीं होते, ये रूल है। योग आलाप के आगे स्त्री वेद, चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दो संयम, सामान्य मनुष्यों में हमने परिहार विशुद्धि को भी लिया था, यहाँ उसको नहीं लेना, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से तेज पद्म और शुक्ल, ये तीन शुभ लेशाएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक शायिक और क्षौपशमिक, ये तीन सम्यक्त्व, संगीनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अप्रमत्त संयत मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, एक अप्रमत्त विरत गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां, दशो प्राण, आहार संज्ञा के बिना शेष तीन संज्ञाएं, क्योंकि वो तो छठे तक होता है आहार संज्ञा उसकी, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, ये नव योग, स्त्री वेद, इतना डिफरेंस है ना सामान्य से, चारों कषायें आदि के तीन ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दो संयम, सामान्य में परिहार विशुद्धि को भी लिया, यहाँ नहीं लेना, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से तेज पद्म और शुक्ल, तीन शुभ लेशाएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक शायिक और क्षौपशमिक, ये तीन सम्यक्त्व, संगिनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। यानी ये तो स्त्री वेदी है, उसमें आहार को नहीं लेना, मन परे ज्ञान को नहीं लेना, परिहार विशुद्धि संयम को नहीं लेना, अपूर्वकरण गुणस्थान वर्तिनी मनुष्य नियम के आलाप कहने पर। एक अपूर्वकरण गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्त किया, दशो प्राण, आहार संज्ञा के बिना शेष संज्ञाएं कौन से तीन होगी? भय मैथुन परिंदा, मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, चारों मनोयोग चारों वचन योग और औदारिक का योग नव योग स्त्री वेद। जब तक वेद का उदय है तो ऐसा ही कथन होगा, बाद में सब समान हो जाएगा। चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना दो संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, विश्रेणी चल रहा है तो अकेली शुक्ल लेशा होगी, भव्य सिद्धि, वेदक सम्यक के बिना औपशमिक और क्षायिक दो सम्यक, क्योंकि श्रेणी के गुणस्थान है इसलिए द्वितीयोपशम या क्षायिक, संगिनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भागवर्तिनी मनुष्य नियम के आलाप कहने पर, पहले भाग में अभी क्या नहीं होगा? भय नहीं रहेगा, वो आठवें तक है। हाँ, आहार और भय नहीं है, दो है। तो एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्त किया, दशो प्राण, आहार और भय संज्ञा के बिना शेष दो संज्ञाएं, मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, चारों मनोयोग चारों वचन योग औदारिक का योग नव योग स्त्री वेद। अभी उदय है ना, यहाँ पर पहले भाग तक है। चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, औपशमिक और क्षायिक दो सम्यक्त्व, संगिनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अभी आगे तो ये अपगत वेदी कहेंगे, परंतु ज्ञान में तीन ज्ञान लेना है, इतना डिफरेंस तो है अन्य से। अन्य जीवों में तो हमने क्या वो बात नहीं है, सामान्य मनुष्यों से इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ ज्ञान में तीन ज्ञान लेंगे हम, वहाँ चार ज्ञान लेते थे। हाँ, क्योंकि अभी अनिवृत्तिकरण में परिहार विशुद्धि का सवाल नहीं है, आहार का सवाल नहीं। अभी यहाँ डिफरेंस क्या है सामान्य से, क्योंकि वहाँ श्रीवेदी कहते थे नौवे के पहले भाग तक, अभी यहाँ सबको अपगत वेदी ही कहना है, किसी भी वेद से क्यों न चढ़ाऊं। अब डिफरेंस कहाँ रह गया? ज्ञान में अभी रह गया। तो एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, अभी द्वितीय भागवर्ती की हम बात पढ़ रहे हैं। एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्त या दशो प्राण, परिग्रह संज्ञा, अभी मैथुन संज्ञा भी नहीं रही, पहला भाग, ये दूसरा भाग है ना। मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, चारों मनोयोग चारों वचन योग औदारिक का योग नव योग, अपगत वेद, अभी यहाँ अपगत वेद नाम आ गया, चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना दो संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, औपशमिक और क्षायिक दो सम्यक्त्व, संगिनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के तृतीय भागवर्तिनी मनुष्य नियम के आलाप कहने पर, अब यहाँ एक एक कषाय कम करते जाना है। एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण, परिग्रह संज्ञा, ये तो दसवें तक कहेंगे अभी, मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, चारों मनोयोग चारों वचन योग औदारिक का योग नव योग, अपगत वेद, क्रोध कषाय के बिना शेष तीन कषाय, ये यहाँ की विशेषता है। आदि के तीन ज्ञान, ज्ञान में तीन को ही लेना है, सामायिक और छेदोपस्थापना दो संयम। आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से चौल एशाय, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औक्षमिक और क्षायिक दो सम्यक्त्व, संगिनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। ये तृतीय भागवती ने यहाँ उसका टेबल है नीचे। आगे बढ़ते हैं, 528 पृष्ठ पर आए हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के चतुर्थ भागवर्ती ने मनुष्य नियम के आलाप कहने पर, एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तियां, दशो प्राण, परिग्रह संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारो मनयोग, चारो वचन योग, औदारिक कायोग, नव योग, अपगत वेद। अब देखो कषाय में माया और लोभ, ये दो कषाय है। आदि के तीन ज्ञान, यहाँ पर स्त्रीवेद के नष्ट हो जाने पर भी मनपरे ज्ञान के नहीं होने का कारण यह है कि जैसे अग्नि से दग्ध हुए बीज में अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्त्री और नपुंसक वेद के उदय से दूषित जीव में वेदोदय के यानी वेद के उदय के नष्ट हो जाने पर भी मनपरे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। यानी ऐसा किसी को बाद में भी उत्पन्न हो सकता है श्रेणी में, तो यहाँ तो उसको भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर भी तीन ज्ञान ही कहे गए हैं। ज्ञान आलाप के आगे सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दो संयम। आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औक्षमिक और क्षायिक दो सम्यक्त्व, संगिनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। यानी वो वेद नष्ट हो जाने पर क्या हर्जा है, ऐसा पूछते हैं ना। हमारे कहने से हर्जा है क्या? क्या परसों फोन आया था किसी का, चौथे वाला क्षय समय दृष्टि होता है तो अनंतानुबंधी का क्षय करता है, तो पांचवे वाला अप्रत्याखंड का क्षय करता है कि नहीं करता? बोलो क्यों नहीं करता? चौथे गुणस्थान वाला अनंतानुबंधी का क्षय करता है, तो पांचवे गुणस्थान वाला अप्रत्याखंड का क्षय करता है क्या? वो तो नवे गुणस्थान में जाके उसका क्षय हो जाता है। कौन से प्रकृति का कहाँ क्या होना वो प्रकृति पर निर्भर है, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता है। उपशम ये तो जो उदय में नहीं आने रूप उपशम। हाँ उदय, तो उसकी सत्ता नौवे तक पड़ी है, ग्यारहवे तो पड़ी हुई होगी, उसमें कोई हर्जा नहीं। परंतु
शपक है वो
क्षायिक गुण, देखो पांचवे वाला क्षायिक हो या सातवें वाला क्षायिक हो, क्षायिक सम्यक दृष्टि कहाँ उसको, दर्शन मोनी का क्षय किया है, चारित्र मोनी का क्षय तो श्रेणी में ही होगा, ये इसमें अनंतानुबंधी जाता है क्योंकि वो सम्यक्त्व का बाधक है। अनंतानुबंधी और दर्शन मोनी की तीन, इनका क्षय करता है वो, चौथे वाला हो पांचवे छठे या सातवें वाला, तो पांचवे वाला इसलिए अप्रत्याख्यान का भी कर दो साथ में, तो ऐसा नहीं है। हमको प्रश्न पूछते क्यों नहीं करता क्या हर्जा है करने में, हमारी कोई हरकत नहीं है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ये पांचवा आला पढ़ लेते हैं, फिर कल हम सूक्ष्म सांप्राय को पढ़ेंगे। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के पंचम भागवर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, बाकी तो वैसा ही है, केवल लोभ कषाय रह गए यहाँ पर। एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां, दशो प्राण, एक परिग्रह संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारो मनोयोग, चारो वचन योग, औदारिक कायोग, नव योग, अपगत वेद, लोभ कषाय, आदि के तीन ज्ञान, ज्ञान में तीन को ही रखना, सामायिक छेदोपस्थापनाएं दो संयम। आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, औक्षमिक और क्षायिक दो सम्यक्त्व, संगिनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। यही रुकेंगे अभी। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा दे।